परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में ध्यान करने के बाद, इस छोटी सी आराधना के बाद, अब हम अपने प्रश्नों पर लौटेंगे। 18वें और 17वें अध्याय में वर्णित आत्मनिर्माण की एक प्रक्रिया पर हमने बात की, या व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया कह दीजिए। कैसे हम अपने व्यक्तित्व को निर्मित करें, कोई भी इंसान कैसे अपने आप को बनाता है, तो वो पूरी प्रक्रिया हमने समझी। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, जैसी जिसकी श्रद्धा है, 17वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा, जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो वही है। हमारी श्रद्धा हमारे जीवन को बनाती है। और ऐसा क्यों होता है, जिस प्रकार की हमारी श्रद्धा होगी उसी प्रकार का हम जीवन जिएंगे। हमारे सामने बहुत से विकल्प हमेशा होते हैं, तो हम अपनी श्रद्धा के अनुरूप अगर हम अपने, देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, जब आत्मश्रद्धा होती है तो व्यक्ति अपने आप को कैसे देखता है, व्यक्ति अपने आप को एक दिव्य आत्मा के रूप में देखता है, एक अद्भुत प्रेम वो अपने साथ अनुभव करता है। जितनी बार वो अपने आप को दर्पण में देखता है उसकी आंखें डबडबा जाती हैं कि हे परमात्मा, आपने कितना सुंदर इंसान बनाया, कितना प्यारा इंसान बनाया। जब ये आत्मश्रद्धा होती है तो भला जिसके प्रति इतनी श्रद्धा है, जिसके प्रति इतना प्रेम है, जिसके प्रति इतना आदर है, उसे जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होगा वही दिया जा सकता है। जैसे परमात्मा को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद क्या ऐसा होता है, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वही प्रसाद के रूप में हम परमात्मा को अर्पित करते हैं। जब आप अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करते हैं, अपने भीतर उस परम को अनुभव करते हैं, तो आप अपने आप को क्या देंगे, प्रसाद के रूप में, भोजन के रूप में, आहार के रूप में। जब हम अपने ऊपर आत्मकृपा करते हैं तो हम अपने लिए अच्छे से अच्छा चुनते हैं, अच्छा भोजन, अच्छा सुनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा ही पीते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट वी ट्राई टू पुट इन आवर सेल्फ्स। अपने आप को हम जो श्रेष्ठ होगा वही अर्पित करेंगे। जब आत्मश्रद्धा का अभाव होता है तो व्यक्ति जो सामने आता है वो देख लेता है, जो सामने आता है वो खा लेता है। इसलिए भगवान ने कहा, सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा से जीवन की शुरुआत होती है। इस श्रद्धा के बाद हम क्या लेंगे, क्या हम अपने भीतर लेंगे, कोई बुरी चीज़ है। आजकल इंटरनेट पर, मोबाइल पर, सेलफोन पर हमारा बहुत सा समय बीतता है, फेसबुक पर लोग देखते रहते हैं, अनावश्यक चीज़ें देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। हमें सावधान होना है, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इसके प्रति बहुत सतर्क रहना है। क्योंकि हर चीज़ जो आप देख रहे हैं, आप अपनी इंद्रियों से जो ग्रहण कर रहे हैं, वो आपको निर्मित करता है, आपको बनाता है, आपके अंतःकरण को, आपके मन को, आपके विचारों को, आपके भाव को, आपके जीवन को वो बनाता है। और जो आप अपने भीतर लेते हैं वो आपकी श्रद्धा को बनाता है, और आपकी श्रद्धा आप भीतर क्या लेते हैं उसको बनाती है, उसको चुनती है। इसलिए जब हम महापुरुषों के संपर्क में आते हैं तो हम अच्छा सुनने लगते हैं, अच्छा देखने लगते हैं, अच्छा समझने लगते हैं, तो हमारे जीवन में एक अच्छाई की शुरुआत होती है। तो ये पहला पड़ाव भगवान कहते हैं व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया का। हमें अपने बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो हम उनको निर्देश देंगे, आदेश देंगे, हम उनको उनके साथ सख्ती का बर्ताव करेंगे। हो सकता है इससे वो कर पाए, हो सकता है इससे नहीं कर पाए, लेकिन उनके भीतर अगर हम आत्मश्रद्धा को जागृत कर दें हम उन्हें बताएं कि उनका जीवन कितना अमोल है, कितना अनमोल है, कितना अद्भुत है, और इस जीवन का जो केंद्र है वो परम है। जब गीता का ज्ञान बच्चों को छोटी उम्र में मिलता है तो उनका जीवन का देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो आत्मश्रद्धा से युक्त होंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनके शरीर को क्षति पहुंचती हो। तो पहला पड़ाव आत्मश्रद्धा, आत्मश्रद्धा गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, माता पिता के प्रति श्रद्धा, प्रकृति के प्रति श्रद्धा। तो श्रद्धा से जीवन, जीवन की नींव, और उसके बाद हम क्या अपने भीतर लेते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, अगला पड़ाव। और फिर जैसा हम आहार लेते हैं, जो हम अपने भीतर लेते हैं, कहते हैं ना जो खाएंगे वही तो पचाएंगे, तो जैसा भीतर हम लेंगे, जो पदार्थ हमारे भीतर जाएगा वही हमारे यज्ञ चक्र का हिस्सा बनेगा, वही हमारे सिस्टम का हिस्सा बनेगा। तो जैसा भोजन हमने किया, जो हमने अपने भीतर डाला, वही चीज जो है वो हमें बनाएगी, और उसी से फिर आगे का चक्र चलेगा। तो भगवान कहते हैं कि उससे सारा, जैसा हमने भोजन किया उस भोजन के अनुरूप अब नींद आएगी कि नहीं आएगी, कितनी गहरी नींद आएगी, शरीर को आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो कितना स्वस्थ रहेगा, मन कैसा रहेगा, कितना शांत कितना अशांत कैसा होगा, तो जो इनटेक हम करते हैं उस पर डिपेंड करता है शरीर का स्वास्थ्य, हमारे मन का स्वास्थ्य, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य, उसी पर निर्भर करता है। तो यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उनके द्वारा, व्हाट यू कंज्यूम यू बिकम दैट। और जैसा हम होते जाते हैं फिर क्या होगा, जो हमारे भीतर गया, वंस दैट इज पार्ट ऑफ अस, उसके अनुरूप हम तय करते हैं कि मैं क्या करूंगा, मुझ में संयम कितना होगा, तो आलस कितना होगा। तो भगवान कहते हैं कि उसी के अनुरूप आपके भीतर ऊर्जा निर्मित होगी, जिस तरह की आप में ऊर्जा होगी, जिस तरह का एक्साइटमेंट होगा, जिस तरह की आप में, उसी के अनुरूप आप चुनेंगे साधना को, उसी के अनुरूप आप चुनेंगे तप को। तो कैसा तप, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप, कैसा तप, तीन प्रकार के तप करने के लिए भगवान ने कहा, मानसिक तप, शारीरिक तप और वाणी का तप। और कहा कि शरीर का तप किसे कहा, अहिंसा को, ब्रह्मचर्य को, सरलता को, पवित्रता को, गुरुजनों के प्रति पूजन का भाव, ये सब कहलाते हैं शरीर संबंधित तप। और कहा कि ऐसा ऐसा बोलें जो उद्वेग को उत्पन्न ना करता हो, हितकर हो, यथार्थ वचन हो, स्वाध्याय से प्रेरित हो, ये वाणी का तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, वाक का संयम, बोलने का संयम, मन का संयम, भावों की संशुद्धि। भावों की संशुद्धि से तात्पर्य है भावों की अत्यंत पवित्रता, इसे मानस तप कहा। तो हम श्रद्धा के अनुरूप इंटेक को चुनते हैं, जैसा इंटेक हम होता है उसी को हम प्रोसेस करते हैं, जैसी प्रोसेस होती है उसी के अनुरूप हम तप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो उस पर निर्भर करेगा। साधना में हम प्रवेश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो उस पर निर्भर करेगा। तो ये तीन प्रकार के सात्विक तप भगवान ने कहे कि यज्ञ की प्रक्रिया में जाएंगे, तीन प्रकार के इन तपों का अभ्यास करेंगे, तो धीरे 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 हम कुछ निर्मित कर पाएंगे। जब हम कुछ निर्मित कर पाएंगे, अपने आप को बनाने की प्रक्रिया में होंगे, तो हमने जो जाना, हमने जो समझा, हमने जो अनुभव किया, वो हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। ये जो बांटने का भाव है, सही मायने में जब हम किसी को देते हैं तो हम किसी और को नहीं देते, अपने आप ही को देते हैं। हमने जाना कि आत्मा अलग अलग नहीं है। अगर किसी कोई बात आपको समझ में आई और आपने उस बात को अपने मित्र के साथ शेयर किया, आपका मित्र आपसे अलग नहीं है। अगर उसके जीवन में शांति है, उसके जीवन में खुशहाली है, तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ेगा। आपने अपने किसी पड़ोसी को कुछ अच्छा बताया, उसके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास किया, तो आपका पड़ोस अच्छा होता है तो पड़ोस आपसे अलग नहीं है। हम इस प्रकृति से, इस पर्यावरण से, इस सृष्टि से अलग नहीं है। जब भी आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं, वो इस सृष्टि को थोड़ा और सुंदर बनाता है, किसी न किसी को अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है, बेहतर बनाता है। तो भगवान कहते हैं, जब आप तप के राह पर आगे बढ़ते हैं तो आप में सामर्थ्य आती है, देने की भाव, देने की शक्ति। दान देना, दूसरों के साथ शेयर करना, ये मेरा कर्तव्य है। मैं दूसरों पे दया नहीं कर रहा हूं, दिस इज माय नेचर। मुझे देना है, आई वांट टू शेयर। दे कौन पाता है? जिसके पास कुछ होता है। तो सही व्यक्ति को देख करके और फिर उसे देना, उसके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास। तो भगवान ने कहा, ये दान जो है, उस दान के द्वारा आप अपने जीवन को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को दूसरों के साथ जो है वो बांटते हैं। और फिर यहीं से धीरे 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 त्याग की भावना विकसित होती है। और त्याग की भावना क्या है? चीजों को, जो चीजें हमें अटकाती हैं, जो चीजें हमें रोकती हैं, धीरे 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 करके उनका त्याग कर देना। तो कर्तापन का त्याग, भोक्तापन का त्याग, ज्ञातापन का त्याग। और भगवान कहते हैं, धीरे 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 जो कर्म आप करते हो, उस कर्म का जो फल है, वो कर्म का फल कहाँ से आता है? कि वो कर्म का फल तो परमात्मा की कृपा से प्रकट होता है। तो कर्मों के फल को भी परमात्मा को अर्पित कर देना, ये लेटर स्टेज है। इसे सात्विक त्याग कहा गया। और जैसे ही हम त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है? जो त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसको आत्म अनात्म विवेक प्रकट हो जाता है। उसे समझ आने लगता है जीवन में, एक स्पष्टता मिलने लगती है जीवन में, क्या सही है और क्या गलत है, इसका भाव स्पष्ट होने लगता है। और जैसे जैसे ये आत्मा और अनात्मा विवेक ज्ञान होने लगता है, व्यक्ति जो है वो सत्व गुण से भरने लगता है, उसके अंदर आत्मज्ञान रूपी बुद्धि जो है वो प्रकट होने लगती है, वो संशयों से रहित होने लगता है। और यही कल्याण का परम साधन है। ये भगवान गीता के 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं। और जब इस स्थिति में व्यक्ति प्रवेश करता है, तो वो ज्ञान को उपलब्ध होता है, तो उसे बातें समझ में आने लगती हैं, तो सात्विक ज्ञान जो है भीतर उतरने लगता है। तो ज्ञान के मूल में त्याग है। और जैसे जैसे त्याग प्रबल होता है, तो ज्ञान बढ़ने लगता है। और भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान से तात्पर्य क्या है, किसे कहते हैं ज्ञान, सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं? तो इसे स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा कि जब सब में वो तत्व दिखने लगे, सब प्राणियों में एक अविभक्त अव्यव भाव को जब तुम देख पाओ, एक अक्षर आत्म तत्व को जब तुम सब तरफ देख पाओ, तो दूसरों के भी, दूसरों से और दूसरों और अपने भीतर का जो एक क्या कहना चाहिए, जो डिफरेंस है, वो डिसॉल्व होने लगे। तो बड़ी कमाल की बात है, व्यक्ति हर चीज़ अपने लिए चाहता है। सही पूछो तो जब हम दूसरों के लिए बहुत कुछ कर पाते हैं तो अपने लिए जो चाहिए वो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और जाने अनजाने में हम सब जो कुछ करते हैं वो दूसरों के लिए ही करते हैं, बस सिर्फ एक भाव का फर्क है। तो ये ज्ञान की बात हुई और भगवान कहते हैं ज्ञान से फिर जीवन का निर्माण। और इस प्रक्रिया को तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ज्ञान के अनुरूप हमारा कर्म होता है, कर्म के अनुरूप हमारा कर्ता होता है। जैसा हमारे कर्ता होगा वैसी बुद्धि, जैसी बुद्धि वैसी धृति, जैसी धृति वैसा सुख, जैसा सुख की कामना हम करेंगे वैसा हमारा व्यक्तित्व होगा, वैसा हमारा स्वभाव होगा, वैसा ही हमारा जीवन होगा। ओम तत्सत। परमात्मा ने नमः। आज के लिए इतना ही।